इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर हैं, ये तो वाणी भी कह रही है, ये महाजी की संत अरदास भी कह रही है। लेकिन कैसे हैं ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आती। इसका यदि पूरा लाइफ का पैटर्न देखा जाए, जिस प्रकार का हमारा लाइफ का चलन है या जीने की प्रक्रिया है, उस पर नज़र डालने से ही इस बात का सही निर्णय हो पाएगा कि इंद्रियों के भोग वास्तव में क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब है क्षणिक है, या कह सकते हैं कुछ देर के लिए है। तो इंद्रियों के जो भोग हैं उसको हम सुख कहते हैं, उसके लिए एक टर्म है सुख। और सुख की मनचाही प्राप्ति नहीं होती है तब हम उसको दुख कहते हैं। इसी में सब संसारियों का जीवन चलता है। इन्हें दो पलड़ों में सारी जिंदगी की बैलेंसिंग चलती रहती है, लेकिन ये डिसबैलेंस्ड ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं। आप कोई पिकनिक स्पॉट देख लो, कोई भी, आप एक सीन देखने गए हो, मान लिया वो यहां से 1000 किलोमीटर पे है, आपने उसके बारे में सुना है, क्योंकि जो जाते हैं वो तारीफ करते हैं उसकी, बड़ा आनंददायक है, बड़ा मजा आता है, देखने लायक चीज है, सब लोग उसका दर्शन करने पहुंचते हैं। वो आनंददायक है, आपने वर्षों कल्पना की है उसकी, अब आपने बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया है मित्रों के साथ, फैमिली के साथ, उस दृश्य का एंजॉयमेंट करने के लिए। तो विचार करने की बात है, आपने कितना उसके बारे में चिंतन किया है, कितना सोचा है। तो जो जितनी भी सोचने की प्रक्रिया है, और जब तक आप उसको देख नहीं लेते, इसको माजी तृष्णा कहते हैं, इसको प्यास कहते हैं। उस दृश्य के लिए मेरे मन में प्यास है, चाहत है, ये तो सुख नहीं है। जब तक आपके मन में किसी चीज के लिए प्यास है, वो तो सुख नहीं। प्यास लगी हो, पानी मिल जाए, तब सुख है। तो आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसके लिए आपने बड़ा भजन किया, बड़ा सेवन किया उसका, बड़ी याद की उसकी, और फिर उसकी तैयारी की, गए, होटल बुक कराया, ट्रेन बुक कराई या प्लेन बुक कराया, पैसा उसके लिए इकट्ठा किया, संगी साथी बनाए, फिर आपने लंबी यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचे, फिर वहां पर पता लगा ये गुफा के अंदर जाना पड़ेगा, गुफा से उस दृश्य का दर्शन होता है, आप गुफा में भी गए, बड़ी उमंग के साथ गए, क्योंकि वो दर्शन पल रहा है दिमाग के अंदर, दर्शन मिलेगा जिसका। स्पॉट पर पहुंच गए आप, आपने वो बड़ा सुंदर नजारा देखा, चाहे वो पानी का नजारा है, चाहे वो झरने का नजारा है, या अन्य कोई प्राकृतिक वहां पर करिश्मा हो रहा है, लेकिन आप ही तो नहीं है मजा लेने वाले, वहां पर लाइन लगी पड़ी है, वहां तो हजारों लोग हैं। तो आपको एक या दो मिनट का मौका मिलता है उसका दर्शन करने का, अपनी प्यास बुझाने का, वहां से आप वापिस आ जाते हो। वापिस आके फिर वही लंबी प्रक्रिया वापसी की चलती है, घर पहुंचते हो, घर पर आकर आपको बड़ी शांति मिलती है कि एक सिर पर से बोझ उतरा, कब से 5 साल से पाले बैठे थे इसको, आज ये उतर गया। चीजें तो एग्जाम्पल से समझनी पड़ेंगी आपको। तो विचार करने की बात यह है कि जो सुख जिसको कहेंगे आप, वो केवल उस वक्त का है जो आप 2 मिनट देख रहे हो, केवल वो 2 मिनट का सुख है, और बाकी सारी चीज कब से मनन कर रहे होगे, कब से डिस्कशन कर रहे होगे, कब से पूछ रहे होगे, कब से उसके लिए साधन इकट्ठे कर रहे होगे, कब से फुर्सत ढूंढ रहे होगे, चाहे बिजनेस में हो चाहे सर्विस में हो, हर चीज चाहिए ना उसके लिए। सुख कितनी देर का मिला? 2 मिनट। तैयारी कितनी हुई? 5 साल। जिस दिन से उसके बारे में सुना था कि बड़ा मजेदार दृश्य है वो, उस दिन से प्यास आपकी कायम है, इच्छा पूरी हो गई, 5 साल का बोझ मन का उतर गया। ये है क्षणिक सुख। एक चीज नहीं है, ये हजारों चीजें भरी पड़ी हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, आपकी आशाओं के अंदर। किसी अंदर मकान की आशा पल रही है, किसी का मकान देख लिया है, बस मैंने ऐसा ही बनाना है, आंख से देखा ही तो है उसको, बस पसंद आ गया, मन ने कल्पना कर ली इसमें सुख मिलेगा, ऐसा मकान मिल गया तो जिंदगी सफल हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अब आपने कल्पना तो बना ली, कल्पना बनाने में तो कोई मेहनत लगी नहीं, लेकिन उसकी तैयारी कितनी लंबी होगी, और यह भी पता नहीं उसका प्रोग्राम में आप सक्सेसफुल हो भी पाओगे नहीं हो पाओगे। हर चीज में तो सक्सेस मिलती नहीं, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, जो पूरी हो जाती हैं वो लंबा सुख नहीं देती। इसलिए लोग जब मकान बना के चुकते हैं, उसमें गृह प्रवेश करते हैं, 2-4 महीने रहते हैं, आप देखिए हर मकान बनाने वाला कमियों का शिकार हो जाता है, बस इसमें ये कमी रह गई, इसमें ध्यान में नहीं आया, काश ये कर लिया होता तो बस। ऐसे ही मन की हालत रहती है, आपके मन की हालत ऐसी ही रहती है। कि आप जिंदगी भर प्यासे घूमते हैं, एंटायर लाइफ राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मन की आपकी निरंतर यही गति रहती है, प्यास। इस प्यास का नाम ही डिजायर है। डिजायर का मतलब सुख नहीं होता, डिजायर का मतलब होता है प्यास, तृष्णा, इसको महाजी मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? रेगिस्तान के अंदर मृग को पेड़ की शेडो दिख रही है रेत के अंदर, और उसका अनुभव बता रहा है, उसका इंस्टिंक्ट बता रहा है कि यहां पानी है, अब वो प्यासा है, अब रेस लगाता है, जहां नजर आता है वहां पहुंचता है, देखता है वो तो आगे, क्योंकि वो शेडो आगे नजर आ रही है उसको। तो पानी हो तो फिर उसकी प्यास बुझे ना, वो तो मृग तृष्णा है। इसी प्यारा जो प्यारा वो जो है बेचारा प्यासा ही मर जाता है। तो इसीलिए ये डिजायर मन में पल रही है भोगों की, इसको मृत तृष्णा कहा गया शास्त्रों में, कि पूरी आयु व्यतीत करके आदमी मर जाता है लेकिन ये प्यास अंदर वैसी की वैसी रहती है, कई बार तो और उल्टी बढ़ जाती है, इस प्यास को लेकर मर जाता है। जिंदगी भर वो इस प्यास को लेकर जिया और प्यास को लेकर ही मर गया। आशा मही जन्मया, आशा में मर जाए मंगत घने कलेश में, नित नित प्यासा रहा है। वाणी तो डिस्क्राइब कर रही, लेकिन मैंने कभी उस वाणी पर गहरा मनन करने की कोशिश नहीं की। मनन करने का तरीका तो यही, तो इसलिए पूरी जिंदगी मैंने एक धोखे में, एक ख्वाब में खत्म कर दी और निराशा संसार से चला। तो हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी नासमझी के कारण हम सुखों की प्यास लेके जीते हैं, सुखों के ख्वाब देखते हैं। और महा जी कहते थे, प्रेमी जिस प्रकार कोई रेगिस्तान में यात्रा करता है बीच में नखलिस्तान आ जाए, नखलिस्तान कहते हैं हरा भरा स्थान कहीं रेगिस्तान में देखने को मिल जाए तो बड़ी ठंडक मिलती है, यहाँ चैन मिलेगा। लेकिन रेगिस्तान की यात्रा करने वाले के लिए कितने दिन रहने को मिलेगा उसमें? घंटा, दो घंटा, चार घंटा, आधा दिन, आधी यात्रा तो करनी है। तो क्या उसको आप सुख कहोगे? वो क्षणिक सुख मिला है, लंबा दुख है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, ख्वाब पाल लिया आपने। कितना लंबा पीरियड स्टडी के लिए चाहिए आपको? कितना लंबा पीरियड उसकी ट्रेनिंग के लिए चाहिए? फिर आपको ऐसे तो नहीं मिल जाएगा आपको। उसके बाद चलो मिल भी गया वो, मान लिया ख्वाब आपने इंजीनियर बनने का देखा था, बन भी गया। तो जो इतना लंबा पीरियड ख्वाब में बिताया आपने, उसके लिए पुरुषार्थ किया, क्या ये सुख के दिन थे? कितना लंबा दुख आपने झेला है? विचार करके देखो कितना लंबा दुख झेला है, 25 वर्ष, 20 वर्ष तनाव का जीवन था, दुख का जीवन था, वो सुख का ख्वाब था। लेकिन हिंदुस्तान का ही डेटा देख लो, कितने इंजीनियर बनते हैं और कितने सुखी होते हैं। कभी किसी संवाददाता के साथ या इंटरव्यू ले लेना इंजीनियर्स का, पता लग जाएगा कितने सुखी होते हैं। परिवार के दुख, समाज के दुख, इच्छाओं के दुख, बेईमानी करते हैं तो सजा का खतरा, लालच बढ़ता जाता है, तनख्वाह से काम ही नहीं चलता, रिश्वतें लेना शुरू कर देते हैं, मिलावट करना शुरू कर देते हैं, हाय हाय दिल के अंदर धुक धुक लगी रहती है कहीं पकड़े ना जाए। किस लिए? सुख के लिए। सुख के लिए दुख इकट्ठा कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। और ये हम जानते हैं, पाप किया तो सजा जरूर मिलेगी। जिससे पूछो ये जरूर कहेगा, भैया पाप मत करना, ईश्वर देख रहा है, सजा जरूर देगा आपको। लेकिन फिर भी करे जा रहा हूं, क्योंकि निश्चय में नहीं है बात, मुंह से कह रहा हूं। तो धुक धुक हमेशा लगी रहती है आपके। कभी बॉस का डर रहता है, कभी नहीं बॉस को खुश किया, उसके हिसाब से बेईमानी नहीं करी तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसका भय सताता रहता है। हजार तरह के टेंशन आपके पास होते हैं, हजार तरह, जिस पर अपने भविष्य की कल्पना थी, अब बच्चों के भविष्य की कल्पना करने पड़ता हूं, मैंने बच्चे को ये बनाऊंगा अपने, और उसके लिए लगा रहता है कोहलू के बैल की तरह से, कमाता रहता है, बड़ा बनाना है मैंने, बड़ी अच्छी शादी करनी है इसकी, समाज में स्टेटस बनाना है। जिंदगी खत्म हो जाती है इन्हीं चक्रों में, और बीच में ऐसे ऐसे घटनाक्रम आते हैं, कहीं शरीर में रोग ऐसा आ गया जिसका इलाज ही नहीं है, अपाहिज होकर घूम रहा है, ख्वाब तेरे रखे रहेंगे। तो जब आप सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार जब मनन करोगे आप, गहरा चिंतन करोगे, तब आप कहोगे ये सांसारिक सुख के लिए जीना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। सांसारिक सुख के लिए जीना इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जब देखो उसकी, सुख दुख की बहुत घाटा है, लंबा दुख है, उसके मुकाबले में बड़ा छोटा सुख है। सुख के मोमेंट्स बड़े छोटे होते। किसी बच्चे को अंदर जलेबी खाने की लालसा उठ रही है, बड़ी चाह रही है जलेबी खाऊं मैं, अब पापा से कहता है पापा मुझे जलेबी खानी है। बेटा जलेबी जरूर मिलेगी, आज तो मंडे है, संडे को मिलेगी, बेफिक्र रहो जरूर मिलेगी। अब वो बालक बेचारा संडे तक तो याद करेगा जलेबी को, नहीं करेगा, वायदा हो गया उससे जलेबी खाने को मिलेगी, याद कर रहा है उसको। तो ये सुख है यार, या टेंशन है, तनाव है, या प्यास है, ये तृष्णा है, ये इच्छा पूरी होती है, पिता ईमानदार है, उसने वायदा किया तो निभाता है। अब बच्चे ने चार जलेबी खा ली, चार जलेबी खाने में घड़ी में देखे एक मिनट लगेगा, सात दिन की प्रतीक्षा एक मिनट का सुख, और सुख के साथ वो और लालयित होता है, फिर वो बार बार याद आती है उसको, उसकी प्यास और बढ़ती है। तो कितना लंबा टेंशन, कितना लंबा तनाव, कितनी लंबी याद, कितनी लंबी प्यास, और सुख का क्षण एक मिनट। तो हमारे सोचने के तरीके उल्टे हैं, हम अपने ही बारे में, अपनी ही स्थिति के बारे में चिंतन करना नहीं जानते, मनन करना नहीं जानते। सत्पुरुष हमको सिखा रहा है कि सुखिया कोई ना देखया जो आया इस संसार। अब कह दो वाणी गलत बोल रही है, यही कहोगे मेरी समझ में नहीं आ रही है बात, ये तो कहोगे, ये हिम्मत नहीं होगी वाणी गलत बोल रही है। तो भैया वाणी जब सही बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि आज तो महाराज जी बात नहीं कर रहे हैं, कई बार आप सुन चुके हैं, वैदिक काल से चलाया ये, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। तो जीने का रास्ता काम भोगान निवर्तयेत, कामना और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, ये जीने का रास्ता है। मैं कह रहा हूं कि कामना और भोगों के अंबार इकट्ठे करो, ये जीने का रास्ता है। तो मरोगे, बर्बाद होगे, क्योंकि सत्पुरुष की बात पे विश्वास नहीं है तो संसार तो इसी मोह में फंसा हुआ है, इसी अज्ञानता में फंसा हुआ है, तो आपने उसका शिकार होने होना। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखों से मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि अपने दुख के पैदा करने वाले आप स्वयं हो। इसी वाणी बड़ा स्पष्ट आपको चेतावनी भी दे रही है और मार्गदर्शन भी कर रही है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मारग धर्म में जीव शीतल हो जाता। अब यहां सत्पुरुष के वचन पर ध्यान देने वाली बात कि मैं अपने आप को देह करके समझ रहा हूं, मैं देह हूं, और गुरु और जो ईश्वर वाणी है वो मुझको जीव करके संबोधन कर रही है, मैं जीव हूं जो मन की अग्नि से जल रहा हूं। मन में काहे की अग्नि है? वासना की अग्नि, कामना की अग्नि मन में पल रही है, और मैं उसके कारण जल रहा हूं। तो मन मेरे लिए आग बना हुआ है, वो आग इतनी नजदीक जल रही है मेरे, मैंने जिंदगी इस आग को बुझाने के लिए व्यतीत करनी थी। काम भोगान निवर्तयेत, कामना और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। तो मन के अंदर वो संस्कार डालने थे, वो विचार डालने थे, वो सोच डालनी थी जो मुझको इस वहम से, इस भ्रम से छुटकारा दिलाती, और मैं अज्ञानियों का संग कर करके ख्वाब तैयार कर रहा हूं। पहले जिंदगी काफी बर्बाद हो चुकी है और बर्बादी की तैयारी कर रहा हूं। भैया रोता हुआ जगत में आया है, रोता हुआ चला गया। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए। तो बिना विचार के बिना मनन के ये बात आपको पूरे जन्म समझ में नहीं आने वाली। जिस दिन भी समझ में आएगी वो इस मनन के द्वारा ही समझ में आएगी। अब आप आज आपकी वो उम्र नहीं है कि बचपना है आपके, तो आपने बड़े होने के बाद भी अपनी बुद्धि को बचपने की हालत में ही रख रखा है। सत्य यह है कि आपने सुख प्राप्ति की तो जरूर समझी, ये सुख दुख रूप कैसे है इस पर कभी मनन करने की गहराई से कोशिश नहीं की। नहीं तो समतावलास जिसको कहते हो मेरे गुरु का ग्रंथ है, मेरे गुरु का शास्त्र है, वो वाणी, वो प्रभु वाणी है, अमर वाणी है, अमर लोक से आई है, गुरु के मुख से निकली है, वो तो चिंतन क्यों नहीं करता? इतनी देर क्यों लगा दी कि आज मन में प्रश्न आ रहा है कि कैसे ये क्षणिक इंद्रिय सुख क्षणिक है, मैंने खुद चिंतन क्यों नहीं किया? और मैं जानता हूं ये सुनने के बाद ही मैंने चिंतन नहीं करना है, हमें शायद एक दो होगा जो उस पर गहराई से चिंतन करेगा, बस एक ही दो होंगे बस, बाकी आज भी सुनेंगे फिर वैसी गाड़ी चलेगी। लेकिन जिस जन्म में भी करो चाहे चिंतन यही करना पड़ेगा, ये तो ईश्वर का रास्ता बंद है, ईश्वर का रास्ता बंद है, उसकी केवल बात है बस और कुछ नहीं। जिसका निर्णय ये हो ही नहीं पा रहा है कि संसार दुख रूप है तो ईश्वर मार्ग पे क्यों चलेगा? बड़ी बेसिक बात है, ईश्वर मार्ग पे क्यों चलेगा? एक हर इंसान कहता है मुझे शांति चाहिए, मुझे चैन चाहिए, यह वर्ड सबसे सुन लोगे, चैन से जीने को चाहिए। भैया चैन से जीने को आम व्यक्ति से पूछो कैसे कहते हैं, भैया काम करना ना पड़े और जो मन की इच्छा वो पूरी होती रहे, बस ये है चैन का जीवन। क्या ये हो सकता है? जब ये हो नहीं सकता तो बेचैनी का जीवन जिएगा नहीं जिएगा? तो इसलिए तू विचार कर, तू चैन चाहता है, बेचैनी से मुक्ति चाहता है, संतोष का जीवन चाहता है, आनंद का जीवन चाहता है, शांति का जीवन चाहता है, लेकिन रास्ता तूने कौन सा पकड़ा? इस रास्ते पर जिस पर दुनिया चल रही है आज तक ये चीजें मिली किसी को? रावण बड़ा बलशाली था, बड़ा पंडित था, प्रखंड यह सारे शास्त्रों का ज्ञान था उसको, और बड़ा शिव भक्त भी था वो, सोने की लंका थी, बड़ा अमीर भी था, दुनिया के सारे सुख उसके पास उपलब्ध थे, लेकिन किस प्यास में जल रहा था वो? किस प्यास में जल रहा था वो? इसका मतलब इंद्रियों के सुख यदि संतुष्ट कर सकते किसी को तो रावण सबसे पहले संतुष्ट होना चाहिए था। ये दुर्दशा क्यों हुई उसकी? जर्मनी के पास कितनी पावर थी, कितनी पावर थी, कितना पैसा था जर्मनी के पास हिटलर के जमाने में, संतुष्ट क्यों नहीं हो गया? वो राज्य का मालिक था, पावर का मालिक था, संपदा का मालिक था, लेकिन भय इतना था कि कोई भी मुझे धोखा दे सकता है, इसे किसी पर विश्वास नहीं करता था, किसी पर विश्वास नहीं करता। तो ये बाहर की चीजें इकट्ठी भी हो जाएं, लेकिन मन की क्या हालत है आपकी? वो तो वही देखेगा ना जिससे बीत रही है, हम उसकी नकल करके निर्णय कर रहे हैं, ये चीज मिल जाए ऐसा हो जाए तो मौज आ जाएगी। तो हिटलर किस प्यास में मर गया है? और कितनों को प्यासा कर गया, विश्व युद्ध कर गया, और सारी उन्नति को अपने हाथों से नाश कर गया, किसकी नकल कर रहे हैं? तो हमारी दुर्दशा इसी कारण है कि हम कभी भी इस बात पर सिंसेरिटी से मनन करने को तैयार ही नहीं है। सत्य है, इस मनन प्रक्रिया को ही शास्त्र का पढ़ना कहते हैं। वाणी का पढ़ना कहते हैं। आपको शायद संगत में एक भी आदमी ना मिले जो वाणी को इस तरह से पढ़ता हो, शायद एक भी ना मिले आप। तो फिर ईश्वर के प्रति चलने में संशय कैसे हो सकता है? वो वहम में पल रहा है, वहम में जी रहा है, ईश्वर के बारे में संशय कैसे हो जाएगा? हो गई। इसलिए गीता ठीक ही कह रही है, हजारों में से कोई एक आदमी इस मार्ग पर चलता है। कौन चलेगा? जो इस पर मनन कर चुका है वही चलेगा। उसका निर्णय हो गया कि जो सत्पुरुष कह रहे हैं आदिकाल से लेकर, क्योंकि जब से ऋषि आए धरती पर, जब से हम लोग धरती पर आए, ऋषि तो यही कह रहा है, अनुभव से कह रहा है। इस मन में कितनी बेचैनी पलती है, क्योंकि सिद्धांत प्रकृति का यह है कि प्रकृति जब तीन गुणों से युक्त है, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, और ये गुण निरंतर आपस में बदल रहे हैं, तो मन चैन में कैसे आ जाएगा? ये निरंतर आपस में बदल रहे हैं, ये प्राकृतिक सिद्धांत है, और प्रकृति ईश्वर के हाथ की चीज है। तो पूरी प्रकृति का सिद्धांत ही यहां खड़ा हुआ है कि इसमें निरंतर परिवर्तन है, तो आपकी प्यास कहां से पूरी हो जाएगी? इच्छाएं बदलती रहेंगी, प्लान्स बदलते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स बदलते रहेंगे, उसमें कितनी बाधाएं आएंगी इसको पूरा करने में। प्राप्त होने के बाद भी कहां बाधा जाएगी सुख भोगने में, कुछ पता ही नहीं। आप बाधा बाहर तलाश कर रहे हो, वो शरीर की बाधा खड़ी जाएगी आपको। बड़े ख्वाब बनाए थे, खूब पैसा होगा तो खूब मिठाइयां खाऊंगा, शौक था मिठाई खाने का, जब पैसा हुआ तो शुगर हो गई, अब भोगो मिठाई। तो मेरी कल्पना मेरी दुख का कारण बन जाती है, हाय हाय करने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसीलिए वो सत्पुरुषों की बात ही ठीक है, नानक दुखिया कुल संसार। लेकिन मैंने कभी गहराई से इस पर खुद विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करी। इस प्रकार का विश्लेषण तो मैं वाणी में ही पढ़ सकता हूं, एक पेज की पूरी वाणी आपको मिल जाएगी एक ही जगह, सब बचपन से पैदा होने से लेकर मरने तक का सारा एनालिसिस पेश कर रही है। लेकिन पढ़ तो मैंने ली इसको ज्यादातर घड़ी में देखे 5 मिनट में, बड़े राग के साथ सुना भी दी मैंने इसको। लेकिन 20 साल पढ़ते हो गया मेरे गले आसर नहीं उतरी, वो उस राग का भी मजा लेता रहा, लोगों को भी दिलाता रहा, क्या वाणी है, क्या दृश्य खींचा है जीवन का, उसको भी अलाप रहा हूं, वो भी राखी चीज बन गई। खुद चिंतन मैंने उस गहराई से कभी नहीं किया। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी संगतें इस वहम में ही कट जाती है जिंदगी संगतों की। सत्पुरुषों की बातें गाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन मनन करने को तैयारी नहीं होती, निर्णय कोई नहीं होता। इसीलिए इस मार्ग पर वही चल पाता है सक्सेसफुली या ईमानदारी से जो सत्पुरुषों की बात पर जो निर्णय उन्होंने दे दिया है, निर्णय कर दिया है, उस पर गहरा मनन करके उसी निर्णय तक पहुंचने की ईमानदारी से कोशिश करता है। वो जानता है कि ये बात 100% ट्रुथ है, मैंने इसको समझकर ही छोड़ना है, सीख कर ही छोड़ना है, निर्णय कर ही छोड़ना है कि वास्तव में जिंदगी दुख रूप है। जिस बिजनेस में 1 करोड़ का प्रॉफिट होता हो और 5 करोड़ का घाटा होता हो तो कोई मूर्ख ही कहेगा ये बिजनेस करने योग्य, कोई मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है ये बिजनेस करने योग्य। उस प्रॉफिट का फायदा क्या, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन 5 करोड़ का घाटा हो रहा है, ये करने योग्य या छोड़ने योग्य? तो ये सुख का मार्ग छोड़ने योग्य है, क्योंकि इसमें घाटा लंबा है, प्रॉफिट कम है, चैन कम है, बेचैनी ज्यादा है, इसमें ये घाटे का सौदा है। इसलिए मनन करके सत्पुरुषों की बातों पर मैं खुद इस निर्णय पर पहुंच जाता हूं एक दिन, जो वो निर्णय दे रहे हैं कि इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर हैं, ये बात ठीक है, शब्दों का प्रयोग और भी हो सकता है इसके लिए, परिवर्तनशील है, महाराज कह रहे हैं प्रेमी हर सुख दुख में बदल जाता है, ये सिद्धांत है प्रकृति का, हर सुख दुख में बदल जाता है, ये बात महाराज जी लिखते क्यों भाई? दुख तो दुख है ही, वो तो मैं भोगता ही हूं, सुख भी दुख में बदल जाता है, तो बचा क्या मेरी जिंदगी में? इसका मतलब वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, दुख परमानेंट है, सुख टेम्परेरी, ये जिंदगी का निर्णय ये है। तो इसीलिए इंद्रिय भवों का रास्ता चुनना ये अज्ञानियों का काम है, विचारवान का काम नहीं है। यदि मैं अपने आप को विचारवान की श्रेणी में या बुद्धिमान की श्रेणी में गिनता हूं तो मुझको होशियार हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, सत्पुरुषों के निर्णय के अनुसार जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। और उसको कहते हैं ईश्वर का मार्ग, अध्यात्म मार्ग, प्रभु भक्ति का मार्ग। तो चैन का रास्ता है, महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, रात सोने में नहीं कट रही है उनकी, जंगल में कट रही है। विचार करके देखो, जिसपे सुख का कोई साधन नहीं है वो इतना शांत, इतना आनंद से भरपूर कि पूरी रात समाधि में बीत रही है, उसकी समाधि, उसकी आनंद की समाधि टूट ही नहीं रही है। जिसको कहना चाहिए कोई सुंदर दृश्य देख के एक मिनट के लिए बेहोश हो जाए, दृश्य में खो जाए, वो आप ऐसा सुख एक ही मिनट के होगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होगा, यदि हुआ भी तो एक ही मिनट होगा ऐसा कि आपको दुनिया का ख्याल ही ना रहे, वो सुख में खो जाओ, इतना अटैक कर ले वो। लेकिन उसकी तो पूरी रात कट गई समाधि उस आनंद में। कह तो देते हैं महाराज जी समाधि में रहते थे, बड़े अहंकार से कहते हैं मेरा गुरु है, देखो समाधि में रहता था, पूरी रात रहता था, लेकिन सोचा कभी वो है क्या समाधि? वो आनंद का सागर है वहां पर, और चाहिए मुझे यही, और कर क्या रहा हूं मैं, गुरु बना लिया मैंने महाराज जी, कर क्या रहा हूं। सोचने को जब तक आप तैयार नहीं है, मनन करने को तैयार नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई निर्णय नहीं हो सकता। इसी प्रकार बहक बहक के, रो रो के जिंदगी बोझ ढोते ढोते आप बिता दोगे, हाथ कुछ नहीं। इसलिए ये निर्णय इसको मनन के बाद स्वीकार करो, मैं अभी भी ये कर रहा हूं, मनन के बाद स्वीकार करो कि इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर हैं, दुख लंबा है। इसलिए आनंद का रास्ता अपनाओ, शांति का रास्ता अपनाओ, संतुष्टि का रास्ता अपनाओ, जिसको ईश्वर का मार्ग कहते हैं, तब जिंदगी सफल है। क्योंकि जिंदगी चार दिन की है, पता नहीं कल डेथ होगी, परसों डेथ होगी, डेथ होके छुटकारा मिल जाए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मिलना नहीं है। तू जीव है, तू देह नहीं है, तेरे संकल्पों के अनुसार, तेरी वासना के अनुसार, तेरे कर्म फल के अनुसार तेरी नई देह इमीडिएटली तुझको मिल जाएगी, इमीडिएटली, देयर इज नो टाइम गैप। तो सारी करनी फिर अगले शरीर में भोगेगा, वही यात्रा करेगा, जैसे इस जन्म में दुख की यात्रा रही, वो अगले जन्म में फिर तेरी दुख की यात्रा के लिए तैयार है। इसलिए क्यों मां जी कहते हैं प्रेमी वक्त को लंबा करता है, इसी जन्म में होश में आ जा, जो वक्त भी बचा है पूरी कोशिश कर उसके लिए। दुनिया देख ली तुमने, कौन से नए सुख प्राप्त मिलेंगे तुझको, जो भोग लिया तूने, देख लिया तुमने, तब इसके लिए जी। लोग जो जी रहे हैं जीने दे उनको, तो उनका ठेकेदार नहीं है, अपना तो ठेकेदार है। तो गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलने की कोशिश कर, क्योंकि गुरु निष्कामी है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसको चेले बनाने की भी कामना नहीं है, वो केवल मेरे दुख को दूर करने के लिए जगत में आया है, और उसका कोई संसार में रोल नहीं। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार, जगत से उसका दुखों से उद्धार करने के लिए प्रभु गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए मैंने उनकी बात पर गहराई से मनन करना है और जीवन का सुधार करना है। ओम ब्रह्म सत्य सर।
मेरा